हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। माधवी की बात सुनकर रूहान ने हैरानी से कहा, ऐसा कौन सा अजीब बर्ताव किया है मैंने? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा। माधवी ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हारा डेली रूटीन कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है। आज सुबह भी तुम कहीं नहीं गए और आज देखो, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, तुम इतनी जल्दी वापस भी आ गए, और तुम्हारे हाथों में क्या है? ये सुनकर रूहान थोड़ा सा झेंप गया। फिर उसने जल्दी से बकेट को माधवी के सामने करते हुए कहा, मैं वो शुगर बेबी के लिए लेकर आया था, और ये फ्लावर भी वो बच्चा साथ में ही भेज रहा था, तो मैंने सोचा खरीद लेता हूँ, उसका भला हो जाएगा। वैसे भी दिन ढलने वाला था और उसका सामान बिल्कुल नहीं बिका था। राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बीवी ने कल रात तुमको इतना डांट दिया हो कि आज तुम्हें उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए ये फ्लावर लाकर देने पड़ रहे हैं? देखो, मैं तुम्हें अभी समझ रही हूँ, बीवी की हुकूमत से बच के रहा करो। अब तक तुम्हें जितना मजबूत हम लोगों ने बनाया है, तुम तो बिल्कुल ग्लेशियर में धूप पड़ने की तरह धीरे धीरे पिघल रहे हो, ऐसा मत करो। रूहान ने आंखें छोटी करके कहा, कहा कि साहब, आप कौन से ग्लेशियर की बात कर रही हैं? और डोंट वरी, मैं बदल नहीं रहा हूँ। बताया ना, बस उसका सामान नहीं बिका था, इसीलिए मैं ये लेकर आया हूँ। इतना बोलकर रूहान ने राधिका और माधवी से ज्यादा बात नहीं की और तेज कदमों से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ पड़ गया। लेकिन फ्लोर स्लिपरी होने की वजह से वो निवेदिता से टकरा गया, जो विहा से बातें करते हुए शायद हॉल की तरफ आ रही थी। उसने जैसे ही रूहान के हाथ में फ्लावर देखे, उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तो वहीं विहा ने भी एक्साइटमेंट में कहा, वो जीजू, आप कितने अच्छे हो, अपनी पत्नी के लिए फ्लावर लेकर आए हो, और आप एक आपके भाई हैं। पता है, सुबह मॉर्निंग में गलती से मुझसे उनका फ्लावर वास टूट गया था, मुझ पर इतनी चिल्लाए थे। उसका बंधा मुंह देखकर निवेदिता ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज आते ही मैं उसके 3-4 डांट लगाऊंगी और वो सुधर जाएगा। फिर उसने रूहान की तरफ देखा, जो विहा और निवेदिता दोनों से ही नजरें नहीं मिला रहा था। फोन के बगल से होते हुए अंदर चला गया। विहा को ये काफी ज्यादा वियर्ड लगा। उसने निवेदिता को देखकर कहा, जीजू को क्या हुआ है, उनका मूड खराब लग रहा है। निवेदिता ने बात को बदलते हुए कहा, मुझे लगता है उसे रूम में जाने की ज्यादा जल्दी है, तुम्हें पता है ना, वो अपनी बिल्ली से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, तो उससे मिलने की जल्दी होती है उसे। चलो हम लोग डिनर बनाते हैं, आज सास बहू मिलकर कुछ स्पेशल बनाएंगे, वैसे भी कल से तो तुम्हें कॉलेज जाना पड़ जाएगा। ये सुनकर विहा का मुंह उतर गया। उसे सबसे ज्यादा बुरा लगता है तो वो है पढ़ाई करना। उसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी थी और वो तो सोच भी रही थी कि आज रात को वेदांत को ये सब बता देगी कि उसे पढ़ाई नहीं करनी है, उसे डायरेक्ट उसकी कंपनी में जॉब मिल जाए और वो पूरा दिन बस अपने हैंडसम पति को देखती रहे। रूहान ने कमरे में जाते ही सबसे पहले अपनी शुगर को ही संभाला और उसे ढेर सारे खिलौने दिए, जिससे वो बिल्ली बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसके बाद रूहान ने उन फ्लावर्स को बालकनी में लगे फ्लावर वाज में रखते हुए गहरी सांस लेकर कहा, आई होप मैडम जी आपको ये पसंद आए। रात के करीब 8:30 बजे वेदांत और अनाही दोनों ऑफिस से घर के लिए निकलकर कार में बैठते ही अनाही ने सीट बेल्ट लगाई और फिर अपना फोन चेक करते हुए बोली, वैसे कल रूहान जी काफी लेट आए थे घर, अगर वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आप मुझे उनका नंबर देंगे, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। वेदांत ने धीरे से कहा, वो लेट ही आएगा, वैसे मैं भी तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। इतना बोलकर वेदांत ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और उसे रूहान के बारे में बताने लगा। मुझे नहीं पता है रूहान ने तुमसे क्या क्या कहा है और क्या क्या छुपाया है, लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और मैं 1-2 बार तो उसे ड्रग्स लेते हुए भी पकड़ा है। बहुत डांट भी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद वो सुधारने के लिए तैयार नहीं है और उसे मुझसे अलग ही किद है। ना जाने क्यों वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता है और ताऊजी भी हमेशा उसी का साथ देते हैं। मैंने उस बात से ताऊजी और अंकल से भी अपने कनेक्शन कम कर लिए हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो लोग रूहान को मैनिपुलेट करते हैं। उसकी ये बात सुनकर अनाही को कहीं न कहीं समझ आ रहा था कि कौन से मैनिपुलेशन की बात वेदांत कर रहा है। फिर उसने धीरे से कहा, पर मुझे लगता है ताईजी और काकी काफी अच्छी है, उन्होंने मेरे साथ तो अच्छा ही बिहेव किया है, खासकर ताईजी ने। काकी जी ने तो फिर भी पहले ही दिन मुझे डांट फटकार लगाई थी और कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन ताईजी काफी अच्छी हैं और वो रूहान जी से भी काफी ज्यादा क्लोज हैं। वेदांत ने गुस्से से कहा, मुझे उनकी क्लोजनेस बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे लगता है सबसे बड़ी मास्टरमाइंड ताईजी ही हैं। वही हैं जो रुहान के साथ 24 घंटे में सबसे ज्यादा रहती हैं और मुझे लगता है इस मैन्युपुलेशन में सबसे बड़ा हाथ उनका है। बाकी तुम समझदार हो, तुम खुद समझ सकती हो कि कौन गलत है कौन सही है। मैं तुम्हें इस बारे में कोई लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए। बाकी दुनियादारी की समझ मुझसे ज्यादा तुम्हें होनी चाहिए, खासकर अपने हस्बैंड के केस में। इसके बाद वेदांत और अनाही के बीच पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई। बार बार वेदांत को स्माइल करते हुए जरूर देख रही थी, जो काफी वियर्ड लग रहा था। वेदांत ऑफिस में भी कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रहा था। घर पहुंचकर अनाही तेज कदमों से अपने कमरे में जाकर सीधा जल्दी से बाथरूम में चली जाती है, ताकि फ्रेश होकर अगर नीचे कोई काम बचा है तो उसमें निवेदिता की हेल्प कर पाए। उसने नहाकर लाइट वेट नेट की येल्लो साड़ी पहनी और फिर अपने गीले बालों को बीच की मांग निकालकर खुला छोड़ते हुए जल्दी से सिंदूर और बिंदी लगाकर तेजी से कमरे से बाहर जाने लगी। उसने एक बार भी रुहान के अटैच्ड कमरे की तरफ नहीं देखा। रुहान, जो शुगर को बाहों में भरे एक टक अपने कमरे की तरफ देख रहा था, उसे लग रहा था अब अनाही उसे पूछने आएगी, कुछ अब आएगी। लेकिन अनाही नहाकर वापस चली गई और रुहान का मुंह उतर गया। उसने गुस्से से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आज से पहले कोई पूछने वाला था और ना अब है। रुहान निमानी इतनी जल्दी किसी के बस में नहीं आ सकता। इतना बोलकर उसने धीरे से शुगर का माथा चूम लिया, जो अब हल्की नींद में नजर आ रही थी। रुहान ने उसे उसके बिस्तर पर लेटाया और खुद भी अपने कमरे में आते हुए फ्रेश होने चला गया। वहीं बाहर जाकर अनाही ने विहा और निवेदिता की डिनर सेट करने में मदद की। डिनर टेबल पर सब लोग मौजूद हो चुके थे, रितेश, जिग्नेश, राधिका, माधवी, निवेदिता, वेदांत, विहा, लेकिन अभी तक रुहान नहीं आया था। ये देखकर अनाही की आंखों में उलझन आ गई। वो परेशानी से सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। माधवी ने अनाही को देखते हुए कहा, बेटा तुम भी खा लो खाना, उसे रात को रूम में डिनर करने की आदत है, मैं ले जाऊंगी उसके लिए। तुम ऑफिस से इतनो थक कर आई हो, चलो बैठो डिनर करो। अनाही ने मुस्कुराकर कहा, नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले निवेदिता ने कहा, सही कह रही हैं जीजी, तुम बैठो आओ हमारे पास। जबरदस्ती अनाही उन लोगों के बीच बैठ चुकी थी। वेदांत की नजरें बार बार विहा की तरफ जा रही थी, जो उसको केक नजर देख भी नहीं रही थी और खाने में कुछ ज्यादा ही बिजी थी। वेदांत ने अपने मन में कहा, मैं क्यों इस पिद्दी सी टोमैटो की अटेंशन के लिए इतना बेचैन हूँ, मुझे नहीं चाहिए इसकी अटेंशन, अब मैं भी इसे पूरी तरह इग्नोर करूंगा। अनाही को ना चाहते हुए भी निवेदिता के साथ खाना पड़ रहा था।
वही माधवी जल्दी से अपना खाना खत्म करके रुहान के लिए डिनर लेकर उसके कमरे में चली गई।